તારીખ 2/8/1998 શ્રી સ્વાનુભૂતિ દર્શન પ્રશ્ન 359 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 287
પ્રશ્ન 358 359 પ્રશ્ન આપ વારંવાર ભેદ જ્ઞાનનો અભ્યાસ કરવાનું કહો છો તો તે અભ્યાસ કઈ રીતે કરો? સીધો પ્રશ્ન છે કે ભેદ જ્ઞાન અમારે કરવું હોય તો કેવી રીતે કરવું? ભેદ જ્ઞાન કરવા યોગ્ય છે એવું સમજાયા પછી આ પ્રશ્ન થવા યોગ્ય છે. સમાધાન: પોતાને 12માં શરીર પ્રત્યે, વિભાવ પ્રત્યે એકત્વ બુદ્ધિ છે, ત્યાંથી એકત્વ બુદ્ધિ તોડીને વારંવાર હું ચૈતન્ય છું, નાયક છું તેમ થવું જોઈએ. થવું જોઈએ એટલે સહજ થવું જોઈએ. શરીર પ્રત્યે એકત્વ બુદ્ધિ છે એટલે શરીર તે હું એવો અભિપ્રાય અને એવો અનુભવ છે. વિભાવનમાં પણ પોતાપણાનો, હુંપણાનો અનુભવ છે અને અભિપ્રાય પણ છે કે આ રાગ મેં કર્યો, આ ભાવ મેં કર્યો, પૂજાનો ભાવ મેં કર્યો, આવો શુભ રાગ મેં કર્યો. પ્રશ્ન વો ચલા હૈ કે ભેદ જ્ઞાન કા અભ્યાસ હમ કૈસે કરેં? સમાધાન વો દિયા કે જીવ કો શરીર કે પ્રતિ ઓર શુભ અશુભ વિભાવ કે પ્રતિ એકત્વ બુદ્ધિ હૈ, તન્મય રૂપ પરિણામ હૈ. એકત્વ મેને તન્મય રૂપ પરિણામ હૈ ઓર અપનાપન કા અભિપ્રાય હૈ કે મેં એસા શરીર વાલા હું, મેરા એસા દિખાવ હૈ, મેને એસા રાગ ક્યા, મેને એસા પૂજા કા રાગ ક્યા, ભગવાન કી પૂજા કી, એસા ક્યા એસા ક્યા. વો એકત્વ બુદ્ધિ કો તોડ કરકે બાર બાર મેં ચૈતન્ય હું, મેં નાયક હું, એસા વિકલ્પ માત્ર નહીં, એસા અનુભવ કરને કા, એસા સ્વરૂપ કો ગ્રહણ કરને કા પ્રયાસ હોના ચાહીએ. વો પ્રયાસ બાર બાર કરને કો પ્રક્રિયા કો અભ્યાસ કહેને મેં આતા હૈ. એસી બાર બાર પ્રયાસ કરને કી જો પ્રક્રિયા હૈ ઉસકો અભ્યાસ કહેને મેં આતા હૈ. અભ્યાસ કહો યા પ્રેક્ટિસ કહો, અભ્યાસ મેને બાર બાર વિકલ્પ કરના, બાર બાર સ્મરણ કરના ઉતની બાત નહીં હૈ. અનુભવ કા પ્રયાસ કો અભ્યાસ કહેને મેં આતા હૈ. હા, જો પ્રેક્ટિસ કરે તો કેળવાય, પ્રેક્ટિસથી દશા કેળવાય છે. પ્રેક્ટિસ પરફેક્શન કો લે આતી હૈ. કોઈ ભી કામ મેં આપની જીતની પ્રેક્ટિસ હૈ ઉતના આપ ઉસ કામ મેં પરફેક્ટ હો જાયેંગે. બુદ્ધિ એટલે અભિપ્રાય અને એકત્વ એટલે તન્મયપણાનું પરિણમન, એ બંને તોડવા જોઈએ. બુદ્ધિ નિર્ણયની ભૂમિકામાં તૂટે છે અને એકત્વ અનુભવની ભૂમિકામાં તૂટે છે. એ રીતે ભેદ જ્ઞાનનો અભ્યાસ ચાલવો જોઈએ. ધર્મદાસજીને એક પદ બનાવ્યા હે, ભેદ જ્ઞાન હી જ્ઞાન હૈ બાકી બુરો અજ્ઞાન. ધર્મદાસ થુલ્લક કહે હેમરાજ તું માન. હેમરાજ ઇનકા કોઈ સ્વાધ્યાય કે મેં યા શિષ્ય મેં કોઈ હોંગે. ભેદ જ્ઞાન હી જ્ઞાન હૈ બાકી બુરો અજ્ઞાન, વો એક હી જ્ઞાન હૈ. किसी भी ज्ञानी को और साधक को पूछा जाए तो सारे दिन क्या करते हैं, बाहर में तो उदयिक कार्यों में दिखेंगे लेकिन वास्तव में वो क्या करते हैं, जिस कारण से वो ज्ञानी है, जिस कारण से उनको निर्जरा होती है, जिस कारण से उदय के कार्य करते हुए भी वो उसको बंधन नहीं होता, तो निरंतर भेद ज्ञान करते हैं. क्या करते हैं? निरंतर भेद ज्ञान करते हैं. आत्मभावना अपने स्टेज के अनुसार एक लय से हर हर काम होना चाहिए. अवलोकन का स्टेज हो, निरंतर अवलोकन चलना चाहिए. वेदना का स्टेज हो, निरंतर वेदना चलनी चाहिए. वेदज्ञान का स्टेज हो, निरंतर वेदज्ञान चलनी चाहिए. और उदासीनता तो सभी स्टेज में प्रारंभ से लेकर के बढ़ती 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 वो क्रम से बढ़ती जाती है. ऐसा सहज होना चाहिए और ऐसा वारंवार कब होता है कि उतनी अंदर लगन लगी हो, जरूरत लगी हो तो होता है. इसके सिवा समझ मात्र से नहीं होता. समझ तो सभी बुद्धि मालकों हो जाती है कि ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए. विधि निषेध तो समझ में आता है, यानी उपदेश तो समझ में आता है. समझ होना एक बात है, परिणमन होना एक दूसरी बात है. यथार्थ समझ परिणमन में कारणभूत होती है और परलक्षी समझ वो परिणाम को नहीं ले आते, वो परिणमन को नहीं ला सकते. तो कहते हैं कोई यथार्थ समझ है, इसका लक्षण कोई होता है कि हाँ होता है कि अंदर जरूरत महसूस होकर लगन लगे. जरूरत लगे तो ही जीव पुरुषार्थ करता है. बिना जरूरत कोई पुरुषार्थ करेगा ही नहीं, ऐसा जीव का स्वभाव है. जरूरत लगे तो पुरुषार्थ किए बिना रहेगा नहीं और बिना जरूरत उपेक्षा होकर के छोड़ देगा, उपेक्षा कर देगा, कोई भी प्रयत्न करेगा नहीं. ऐसा भी सहज ही है. अब ये प्रश्न हो सकता है कि हमको जरूरत नहीं लगी तो जरूरत कैसे लगे. सुख की जरूरत है कि नहीं ये देखो. सारे दिन तुम जो कुछ भी करते हो सुख के लिए या किसके लिए? तो सुख की जरूरत है. वास्तविक सुख क्या है? और काल्पनिक सुख क्या है वो सत्संग के दौरान समझना चाहिए, उतनी बात है। और सही रास्ता ग्रहण करना चाहिए। सुख की जरूरत सबको है, सुख की जरूरत तो लगी ही है, कैसे लगे वो सवाल नहीं है, लगी ही है सबको। लेकिन सुख नहीं मिलता है तो कभी कुछ ने कुछ सुख के लिए जीव करता ही रहता है। अब कहते हैं कि सही समझ करके भेद ज्ञान का प्रयास करो, भेद ज्ञान का अभ्यास करो, तो आत्मा में से सुख की प्राप्ति होगी। और वो सुख निराकुल सुख होगा और वो सुख शाश्वत टिकने वाला सुख होगा, वो सुख स्वाधीन होगा, पराधीन नहीं होगा, अपने वश सुख की प्राप्ति होगी, परवश सुख की प्राप्ति नहीं है कि ऐसा होवे तो सुख मिले, वैसा नहीं हुए तो सुख नहीं मिले, हम क्या करें, वो बात नहीं रहेगी। सत शास्त्रों में सुख का स्वरूप भी समझाया है। प्रवचन सार में ये विषय प्रथम अधिकार में बहुत अच्छा चला है कि आत्मा का सुख कैसा होता है और जगत का सुख में दुख कैसा होता है, बहुत विस्तार से वो सारा अधिकार चला है। उसमें वो बात है कि आत्मिक सुख है वो निराकुल है, शाश्वत है और स्वाधीन है, तीन बात है। स्वाधीन होने से किसी की अपेक्षा नहीं और कोई परतंत्रता नहीं, किसी के अंडर में नहीं रहना पड़ता। यहाँ तो सबको किसी न किसी के अंडर में रहना ही पड़ता है, ऐसा नहीं होता कि मन चाहे वैसे कोई कर सकते हैं या रह सकते हैं, ऐसा नहीं होता। कम से कम छोटे को बड़ों के अंडर में रहना पड़ता है, इतना तो होता ही है, या कभी कभी कुछ केस में बड़ों को छोटे के अंडर में भी रहना पड़ता है, लेकिन कोई स्वतंत्र रहते हैं ऐसा तो नहीं बनता। हर प्रकार के बंधन होते हैं, समाज के बंधन होते हैं, कानून के बंधन होते हैं, कुटुंब के बंधन होते हैं, और सबसे अधिक अपनी प्रकृति का बंधन भी होता है, अपने राग का अनुराग का भी बंधन होता है। प्रकृति का बंधन ऐसा है कि हम नहीं चाहें तो भी परिणाम हो जाता है, किसी को क्रोध का, किसी को माया का, किसी को मान का, किसी को लोभ का, होता है कि नहीं होता है। क्रोध मन माया लोभ की चार प्रकृति है, तो परिणाम नहीं चाहते हुए भी होता है कि नहीं होता है, तुम्हारा जीव बनता है कि नहीं बनता है। ऐसे ख्याल आता है किसी को, सबको नहीं आता है, किसी को ख्याल आता है, अरे मेरे ऐसे परिणाम हो गए, हम तो नहीं चाहते हैं कि ऐसा परिणाम हमारे हो, फिर क्यों हो गया, ऐसा होता है कि नहीं होता है। हाँ, क्या देख लो कि क्या आपके परिणाम आपके कंट्रोल में है, क्या देखो आप चाहे वैसे परिणाम कर सकते हो क्या। जब आपके खुद की पर्याय, आपके खुद के परिणाम आपके वश में नहीं है, तो और कौन सी चीज पर आप अधिकार जमाना चाहते हो, वो देखो। बहुभाग तो क्या है, दूसरे के परिणाम हमको ठीक करना है। आपको ऐसा क्यों नहीं हुआ, आपको हमारे प्रति ऐसा क्यों नहीं है, ये अपेक्षावृत्ति वाले परिणाम। आपको हमारे प्रति ऐसे परिणाम होने चाहिए, आपको हमारे प्रति ऐसे परिणाम होने चाहिए, ये आपका ड्यूटी है, ये आपका वो है, वो आपका फर्ज है। हाँ, अरे तुम्हारे खुद के परिणाम तुम्हारे बस में नहीं है, दूसरे के परिणाम तुम्हारे बस में तुम लाने की बात करते हो, ये कल्पना विहार है और क्या चीज है। कल्पना के अलावा क्या है इसमें। पति चाहता है कि पत्नी मेरे साथ ऐसे ही रहे और पत्नी चाहती है कि पति मेरे साथ ऐसे रहे, माँ बाप चाहते हैं कि लड़का मेरे साथ, लड़की लड़का है मेरे साथ ऐसे रहे, और लड़के लड़की चाहते हैं कि माँ बाप है तो उसको ऐसा करना चाहिए, उसका भी वो कोई ड्यूटी होता है, उसको भी ऐसा करना चाहिए, उसको भी ऐसा होना चाहिए। ये सब गड़बड़ कितनी दुखदायक है, इसका अगर जीव हिसाब निकाले तो परेशान हो जाए। और जितनी अपेक्षा होती ज्यादा उतनी आकुलता और दुख भी ज्यादा, देखो अनुभव करो। जबकि आत्मा का जो सुख है वो पराधीन नहीं है, हमको वो ऐसा करे तो सुख मिले, वो ऐसा नहीं करे तो सुख नहीं मिले, ऐसी बात नहीं है। वो निराकुल शांत अंदर से प्रवाह चलता है, सुख का भीतर से आता है, इसमें किसी की अपेक्षा की जरूरत नहीं है। एगंत सुही मुनि वितरागी, एगंत मैंने एकांत, वितरागी मुनि एकांत सुखी होते हैं। तो उसको कोई क्यों कि उसको कोई अपेक्षा नहीं। हमारे लिए ऐसा आहार बनाना, हमारे लिए ठहरने की ऐसी व्यवस्था होनी, कोई अपेक्षा उसको है ही नहीं, इसलिए वो सुखी है, दुखी बिल्कुल नहीं है। और जितनी जितनी अपेक्षा ज्यादा उतना दुख ज्यादा। जैसे जिसके पास पैसे हैं वो ज्यादा से ज्यादा साधन प्रसाधन इकट्ठे करते हैं, होते है कि नहीं होते, उतनी अपेक्षा वृत्ति उसकी, इसमें से सुख लो, इसमें से यहां से सुख लो, यहां से सुख लो, यहां से सुख लो, आकुलता के सिवा कुछ मिलता नहीं है। विदेश में वो बात ज्यादा है तो वो लोग की बेचैनी भी ज्यादा है, वो प्रत्यक्ष दिखने में आती है, बहुत बेचैन हो। एक बात इच्छा में अपेक्षा थे, अपेक्षा थी, हाँ એટલે અભિપ્રાયની ભૂલ હોય, થીવાળી પણ ઈચ્છા હોય છે, અપેક્ષા હોય છે, અભિપ્રાયની ભૂલ વગર અભિપ્રાય વિરુદ્ધ પણ ઈચ્છા થાય, પણ અભિપ્રાય વિરુદ્ધ થાય તો એનો નિષેધ આવે, નકાર આવે, આ નથી, આમ નહીં થવું, આમ નહીં, એનો ખેદ થાય। અભિપ્રાય સહિત હોય તો એમને આગળ ને આગળ દોડ્યો જાય, બે પ્રકાર થાય, જ્યાં સુધી રાગ છે ત્યાં સુધી ઈચ્છા છે, ત્યાં સુધી રાગનો રસ ભલે ન હોય પણ રાગ છે એટલી ઈચ્છા તો છે, એટલી આકુલતા તો છે। એટલે તો સંપૂર્ણ વિતરાગ થવાનું ધ્યેય છે, કેમ કે જે થોડો રાગ તો થોડું દુઃખ જોઈએ છે, દુઃખ તો કોઈને થોડું પણ નથી જોઈતું, એમ છે। ભેદ જ્ઞાન કબ હોતા હૈ એવો પ્રશ્ન ઉઠાયા હૈ ખુદને, સમાધાન દેતે હુએ પ્રશ્ન ઉઠાયા કે ભેદ જ્ઞાન કરના ચાહીએ વો એક બાત હૈ, કબ હોતા હૈ કે અંદર સે જરૂરત લગે ઓર અંદર કી લગની લગે તબ, જરૂરત મેં ભી કઈ પ્રકાર હોતા હૈ, તાતી જરૂરિયાત લાગે તો અત્યારે જોઈએ, અભી અભી ચાહીએ, और ऊपर ऊपर से हो तो ठीक है, जरूरत है लेकिन चल जाएगा, जरूरत है लेकिन चल जाएगा, ये काम ही होगा। इसलिए जरूरत के साथ लगन की बात लिया है कि लगन लगे तो अनादिनी एकत्व बुद्धि छे, तेने तोड़ीने वारंवार हूँ चैतन्य छू, हूँ चैतन्य छू, तेम सर्वात्मा विकल्प रूपे थाय छे, सहज धारा थाय त्यारे यथार्थ परिणमन थाय छे, पण त्या सुधी भावना रूपे विकल्प होय छे। स्पष्टीकरण आप्युं छे केम कि शुरुआत वाले को तो ऐसा ही होगा, विकल्प चलेगा, मैं चैतन्य हूं ऐसा विकल्प चलेगा। फिर भी ये विकल्प भावना के साथ होना चाहिए, कोरा विकल्प नहीं होना चाहिए। बहुत सुंदर मार्गदर्शन है ये। जो भी आत्मस्वरूप का विकल्प करता है वो भावना के साथ करता है या बिना भावना कोरा कोरा चलता है? जिसको कोरा विकल्प चलता है वो विकल्प में चढ़ जाएगा, क्योंकि उसने वो निश्चय कर लिया है कि मुझे यही परिणाम करना है, मैं नायक हूँ, मैं चैतन्य हूँ, ऐसा ही मुझे परिणाम करना है, तो वो विकल्प से करता रहेगा, साथ में भावना नहीं होगी तो उसमें से निश्चय आभास हो जाएगा। भावना के अभाव में निश्चय आभास होता है, हो सकता है, इसलिए हम बात लिया कि भावना रूपे विकल्प, पूरा विकल्प नहीं, भावना रूप विकल्प होना चाहिए, भावना समेत, भावना सहित विकल्प होना चाहिए। भावना होगी तो जिसका विकल्प है उसका पदार्थ ज्ञान में आने पर उसमें एकत्व होने का अवसर आएगा, वो भावना के कारण से है। और वो फिर सहजता धारण करेगा। ये बात भेद ज्ञान के स्टेज तक पहुंचने वाले की है। ऐसे सीधा कोई भेद ज्ञान करना चाहिए चाहे तो नहीं हो सकता है, या कोई स्वरूप का विकल्प करता है तो उसको स्वरूप का अनुभव नहीं होता है, रटन कर लेता है। अब यहां ब्रह्म होने का भी एक अवकाश है, कर्ता होने के भी एक अवकाश है, और भ्रांति हो जाएगी कैसे कि कोई जीव ऐसा कहता है कि हम भावना पूर्वक यही रटन करते हैं, तो हमारी भावना है तब तो रटन करते हैं, और लगातार रटन करते हैं तो हमारी भावना भी है, तो एक दिन हमारा काम हो जाएगा। ये भ्रम होने का यहाँ अवकाश है। तो भ्रम है या सही है उसका पता कैसे लगे, या ये बात कैसे समझ में आए? विषय चलता है तो पूरी छानबीन होनी चाहिए, क्योंकि हमारे ये सब कुछ हो रहा है। कई लोग नायक के विकल्प में बहुत करते हैं और ये कहते हैं कि देखो अगर हमारी भावना नहीं होती तो हम कैसे करेंगे, और हमारी लगन है तब तो लगातार करते हैं हर बात में, फिर भ्रांति में, फिर आप कैसे कहेंगे कि हम भ्रांति में हैं, और हम मानेंगे भी कैसे कि हम भ्रांति में हैं? ये बात आएगी कि नहीं आएगी। तो इसलिए कहते हैं कि आपको स्वरूप का भाव भाषण हुआ कि नहीं हुआ वो देखो, ये इसका चेकिंग पॉइंट है कि भाव भाषण हुआ कि नहीं हुआ। जिसको स्वरूप निश्चय कहते हैं, जिसको दूसरा समकित कहते हैं, परमार्थ की स्पष्ट अनुभवान से प्रतीति, ये हुआ कि नहीं हुआ वो पहले बताओ। भाव भाषण है तो स्वरूप ज्ञान में है, और ज्ञान में है तो फिर इसकी भावना सही है। जो स्वरूप ज्ञान में नहीं है उसका रटन करते हो बिना भाव भाषण, बिना पहचान, भाव भाषण एक पहचान है, तो वो कोरा विकल्प हो जाएगा। वो सहजता भी आदत के कारण से हो गई है, उसमें कोई यथार्थता नहीं है, कोई यथार्थता उसमें नहीं है।
ये आपने भावना की बात तो बहुत आगे की चली, इससे पहले की भावना यथार्थ है नहीं,
इसकी बात तो फिर ज्ञान का अस्तित्व की बात चल रही नहीं। भावना तो यथार्थ भावना से प्रथम वेदना आती है, वेदना नहीं आती इसका मतलब भावना है ही नहीं। ये लेना क्या लेना, हम स्वाध्याय करते हैं रोजाना, स्वाध्याय में उपस्थित रहते हैं, इसलिए हमारी भावना है, ये भी बहाना मत पकड़ना। हम शास्त्र पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं, मंदिर जाते हैं, पूजा भक्ति करते हैं, कुछ हमारे परिस्थिति अनुसार दान भी करते हैं, कभी कभी यात्रा भी कर लेते हैं, कभी कभी व्रत उपवास भी करते हैं, और पंच परमिष्टि आदि की माला जाप भी करते हैं, बहुत से साधन है। इसलिए हमारी भावना है वो कोई भावना का मीटर नहीं है, ये कोई भावना के नाप नहीं है। और सब मुमुक्ष ऐसे करते हुए देखने में भी आते हैं, क्या सबको भावना हो गई क्या नहीं है। वेदना आती है, वे तो बताया कि भावना होगी तो उसको छटपटाहट उतनी होगी कि वेदना में आएगी ना, रहेगा नहीं। पहले चिंता होगी, सामान्य चिंता तो सबको होती है, लेकिन वेदना आए कोई सही चिंता है, कोई चिंता सही है। इसलिए अपने आप को गिनना नहीं कि हम कुछ है, देखो हम उतना करते हैं, उतना करते हैं, उतना करते हैं, वो नहीं गिनना। इतना होता है वो नहीं गिनना, ऐसा विकल्प होता है, ऐसा भाव होता है, वो नहीं गिनना। यहां से भावना, सही भावना, यथार्थ भावना का ये प्रथम चरण है, फिर ये भावना बढ़ती जाती है। तो भेद ज्ञान के स्टेज में कितने दरिद्र में बढ़ी हुई होती है इसका अंदाज लगा देना, जब लगातार निरंतर भेद ज्ञान चले, कि जिसका फल स्वानुभूति आवे। सम्यक दर्शन स्वानुभूति उतनी सस्ती चीज नहीं है, अरे तो अनंत काल गियो न होत। आगे बोल में आपने आवी गई, यम नियम संयम आप कियो, पुनि त्याग विराग अथाग लियो, मन मौन रहो जप क्यों ही तको, दृढ़ आसन पद्म लगाई दियो, सब शास्त्र न के नये धार ही ये, मत मंद न खंडन बोत किए। અને તો અનંત કાળ ગયો જ ન હોત. આગળના જ બોલમાં આપણે આવી ગયું, જેમ નિયમ સંયમ આપ કયો, પુન ત્યાગ વિરાગ અથાગ લિયો, મન મૌન રહ્યો જપ ક્યોહી તકો, દ્રઢ આસન પદ્મ લગાઈ દિયો. તો શાસ્ત્ર ને કહે ન એ ધારી એ મત મંદ ને ખંડન બોત કીએ. એ સબ કર ચુકા હે, એ સાધન બાર અનંત કયો, સબ હો ગયા હૈ. યથાર્થતા મેં નહીં આયા, ક્યા યે સાધન હૈ, યથાર્થતા મેં ભી યે સાધન હૈ ઓર એ યથાર્થતા મેં યે હોતે હૈ. યથાર્થતા ચાહીએ, યથાર્થતા વહી સમ્યક્ત્વ કા પ્રી સ્ટેજ હૈ. ક્યા યથાર્થતા હૈ વહી સમ્યક્ત્વ કા પ્રી સ્ટેજ હૈ. यानी यथार्थता है वही विकसित होकर के, उसका डेवलपमेंट होकर के सम्यक्त्व में परिणमन होता है. यहां से ले तो ऐसा है, यहां से ले तो ये बात है. तो कहते हैं शुरुआत में विकल्प रूपे होता है, वो विकल्प भावना रूपे विकल्प होना चाहिए, भावना के समेत होना चाहिए, और वही स्टेज की भावना. फिर सहज धारा होती है तो यथार्थ परिणमन हो जाता है. अब एक उसका दूसरा पहलू बताते हैं. भारना क्या चैन न पड़े, यहां तो थोड़ा विचार चले और कुछ उदय आए तो बस खत्म हो गया, उसमें लग गया, उसमें वो बात नहीं है. बाहर में कैसा भी उदय आए चैन नहीं पड़े, बाहर में कहीं भी चैन नहीं पड़े, इधर पड़े और उधर नहीं पड़े वो बात नहीं, कहीं भी नहीं पड़े वो बात है. और अवस्था का वो नियम है कि जब वो एक ओर झुकती है तो दूसरी सभी ओर झुकने का उसका बंद हो जाता है. एक तरफ तीव्र झुकाव था बाकी वो तो ऑटोमेटिक बंद. આપણે મુમુક્ષુ ફરિયાદ પરિણમનની ચર્ચામાં આવે છે કે અમને આવું થઈ ગયું, અમને આમ થઈ ગયું, અમને આમ થઈ જાય છે, અમને આમ થઈ જાય છે, આવા પરિણામ થઈ જાય છે, આવા પરિણામ થઈ જાય. શું ઉપાય એનો? કે સરખી રીતે ઝૂકો, ભાવનાથી સરખી રીતે ઝૂકો. વેદનામાં એક વખત ઝૂકી જાવ તો બધે ઉદાસીનતા આવી જશે. અને આવડો મોટો પ્રોબ્લેમ છે, અનંત જન્મ મરણનો પ્રોબ્લેમ છે, કોઈ સામાન્ય વાત તો છે નહીં. એની ચિંતા ગળે પડે, ચિંતા ગળે લગી, ફિર કહીં ચેન પડને વાલા હૈ. बात ये आएगी भाई, देखो हम तो खाते हैं पीते हैं मौज मजाक करते हैं आनंद करते हैं, आप तो दुखी होने की बात करते हो, पहले से ही बेचैन हो जाओ. वो बात कैसे पसंद करेंगे भाई? चार दिवस नी पण चांदनी नहीं, फिर जो दुख आएगा वो तुम बर्दाश्त कर पाओगे? तो चार दिन की भी चांदनी में. इसलिए भी बहुत अच्छा मौका है, शरीर भी सलामत है, पांच इंद्रियों सलामत है, विचार शक्ति भी सलामत है. विवेक करो, क्या विवेक करो, अपना सुख दुख का विवेक करो. ये बात भी सुखी होने की है, बेचैन हो जाओ वो बात भी अनंत काल की बेचैनी मिटाने के लिए है, ये भी एक सुखरूप है। क्या है? ये भी एक सुखरूप है। बाहर मा क्या ही चैन न पड़े, एकत्व बुद्धि वक्ते पण चैन न पड़े, चैन न पड़े। पूर्तानु अवलोकन हो तो विशेष बेचैनी था। अरे मारे एकत्व थी जाए, मारे तन्मयता थी जाए, कषाय दुखदायक है के नहीं है बताइए, इसमें कोई दो मत है? कषाय दुखदायक है के नहीं है? क्या है? उस कसाय के साथ हमारी आत्मा एकत्व तन्मय हो जाता है तो दुख भोगता है, बहुत दुख भोगता है। वो दुख से छुड़ाने की बात है, बात तो दुख से छुड़ाने की है। तो पोताने शोधीने पोतानो आश्रय ग्रहण करे, शू कहे छे? क्यांय चैन पड़े नहीं, एकत्व बुद्धि मां पण चैन पड़े नहीं, हवे पोताने शोधीने पोतानो आश्रय ग्रहण करे। भाव भाषण ये अंतर संशोधन नु फल छे। काल प्रश्न कर्यो तो ने, भाव भाषण पहला शु स्वरूप निश्चय, पहला शु प्रश्न कर्यो, पहला केवी दशाओ छे प्रश्न, अंतर खोज अंतर संशोधन अपूर्व जिज्ञासा थी। जेने एक नो एक दीकरो खोवाई गयो होय के कोई ताजी परणेली बाई नो धणी कोई किडनेप करी गयो होय, तेने चैन पड़े छे क्या? पाडोशी ने त्यां प्रसंग होय ने मिठाई नो पैकेट आपी जाय खावा बेही जाय काय? ऊंघावे क्या? શું થયું હશે? એને જીવતો રાખ્યો હશે કે મારી નાખ્યો હશે? ક્યાં હશે? ખાવા પીવા મળતું હશે કે નહીં હોય? એને સતાવતા હશે કોઈ કે શું કરતા હશે? મારતા હશે, શું કરતા હશે? હે, જીવતો પાછો આવશે કે નહીં આવે? ભયંકરમાં ભયંકર બધી કલ્પના થઈ થઈને દુઃખી થાય। પોતાનો આત્મા ખોવાઈ ગયો છે એની ખોજને એનું સંશોધનને એની બેચેની ઊભી થતી નથી, એ ખાઈ પીને લહેર કરે હોઈ જાય। ત્યાં ચિંતા થાય। અરે ઘરનું એક બાળક પણ કોઈ ઉપાડી જાય ને તો ગામ ગાંડું કરે, શું કરે? ગામને ગાંડું કરે, એ તમે દોડો, તમે અહીંથી દોડો, તમે અહીંથી દોડો, તમે અહીંથી દોડો, ગામને પરગામ બધે તાર ટેલિફોન જેટલા સાધન છે એટલી થોડા દોડ, ક્યાંય ચેન પડે નહીં, સુખ પડે નહીં, હક થાય નહીં ક્યાંય। ભગવાન આત્મા ખોવાઈ ગયો છે એની બેચેની નથી। જુઓ આ મોહનો પ્રભાવ, આ શેનો પ્રભાવ છે? આ મોહનો પ્રભાવ છે। એ મોહના પ્રભાવમાંથી હવે જે છટકવા માંગે છે, છૂટવા માંગે છે, એ અંદરમાં ખોજમાં લાગે છે। એવી ખોજ ઉપડે કે એને ક્યાંય ચેન પડે નહીં, ક્યાંય પરિણામ લાગે નહીં, ક્યાંય ઉપયોગ ચોંટે નહીં। એમ અંતર સંશોધન કરીને આશ્રય કરે અથવા ગ્રહણ કરે, એ સ્વરૂપે ગ્રહણ કરવાની વાત છે, માત્ર વિકલ્પ કરવાની વાત નથી. એક વાક્યમાં અંદર કેવું પડ્યું છે, ચેન ન પડે પોતાને શોધીને, પોતાને પોતાને શોધીને પોતાનો આશ્રય કરે અથવા પોતાને ગ્રહણ કરે, એમને સીધો આશ્રય વિકલ્પ કરતા કરતા આશ્રય થઈ જશે એમ થતું નથી. અને તે ન થાય ત્યાં સુધી શ્રુતનું ચિંતન કરે. બહુ સરસ વાતો કરી, ચર્ચા બહુ સારી ચાલી છે. એવું ન કરે ત્યાં સુધી શું કરવું? શ્રુત, સત્શ્રુત, નાનીના વચનો, ગુરુના વચનો, આચાર્યોના વચનો, એના ઉપર વિચાર કરે, એનું ચિંતન કરે ગંભીરતાથી. એક શિષ્ટ છે, શાસ્ત્ર વાંચવાનો નિયમ છે, શિષ્ટનો નિયમ છે, શાસ્ત્ર ગંભીરતાથી વાંચવું, અગંભીર ઉપયોગે ગંભીર ઉપયોગે વાંચવું, અગંભીર ઉપયોગે શાસ્ત્રનો વાંચવું, એને વાંચવું એમ ન કર્યું, ચિંતન કરે ત્યાં સુધી, શ્રુતનું ચિંતન કરે. સત્શ્રુત છે એ બહુમૂલ્ય વાત છે, રત્નોની ખાણ છે. કેવી છે? રત્નોની ખાણ. જે જ્ઞાનીઓએ, જે મહાત્માઓએ અનુભવના અમૃત પીતા પીતા એને પાને ચડાવ્યા છે, જે સદગુણો આત્મિક ગુણો પ્રગટ કર્યા એને પુસ્તકારૂઢ કર્યા, ગ્રંથારૂઢ કર્યા, એ બધી રત્નોની ખાણ છે, નિત્યબોધક છે. કેવા છે? નિત્યબોધક છે. જ્યારે જરૂર પડે ત્યારે હાજર, જ્ઞાનીનો હાજર થાય એવી રીતે. તમારે જરૂર પડે ત્યારે જ્ઞાની હાજર થાય એવું કંઈ ન બને, પોસિબલ નથી. શાસ્ત્ર તો જ્યારે જરૂર પડે ત્યારે હાજર. અડધી રાતે તમને ચિંતન થાય ચાલતું હોય ને, અહીંયા શું કે છે, અહીંયા જ્ઞાની શું કે છે, અહીંયા ગુરુ શું કે છે, ખોલી શકો, તમે ખોલી શકો. નિત્યબોધક છે. અહીંયા આવો ઉપદેશ છે, અહીંયા આવો ઉપદેશ છે, અહીંયા આવો ઉપદેશ છે. જ્યાં સુધી પ્રયત્ન ને પુરુષાર્થ ન ઉપડે એમ કહેવું છે, ત્યાં સુધી શ્રુતનું ચિંતન કરવું, બીજે રસ્તે ચડી જવું નહીં એમ કહે છે. દેવ શાસ્ત્ર ગુરુમાં ચિત્ત લગાવે, વિતરાગ દેવ, વિતરાગી ગુરુ, વિતરાગી શાસ્ત્રો, એમાં ઉપયોગને લગાવે, રુચિ હોવી જોઈએ, વગર રુચિ નહીં થાય. આ પોતે બધું આ કરેલું છે એટલે એ પોતાના અનુભવથી બધી વાત કરે છે. વાતે વાતે એમ ન કે અમે આમ કરતા હતા, અમે આમ કરતા હતા, પણ સમજી લેવું, કહેનારના અનુભવને સમજવો, અથવા વચનો પાછળ એમનો અનુભવ શું છે ત્યાં સુધી વિચારવો, વચનને ત્યાં સુધી વિચારવું, એટલે કે વચનને અનુભવ સુધી વિચારવો. વચનને ક્યાં સુધી વિચારવું? સામાન્ય રીતે લોકો વચનને અર્થઘટન સુધી વિચારે છે, કે આનો અર્થ શું થાય, અથવા આમાંથી કેટલા અર્થ નીકળે, એમની એ વચનોમાં અનુભવ ભરેલો છે. અનુભવમાં બોલી બોલીને લખાયેલી વાત છે. અનુભવને સમજવો, અનુભવને જોવો તો અનુભવની મુખ્યતા આવશે. શેની મુખ્યતા આવશે? અનુભવની મુખ્યતા આવશે તો અનુભવ થશે. અનુભવની મુખ્યતા વિના અનુભવ નહીં થાય. તર્ક વિતર્ક અને વિકલ્પમાં ચાલ્યા જવાનું થશે. એનું નામ સત્સૃતનું ચિંતવન અને દેવ શાસ્ત્ર ગુરુમાં ચિત્ત લગાવવાની વાત છે. નમો અરિહંતાનું બોલી છે ને આપણે પંચ પરમેશ્વર, તો અરિહંતનું સ્વરૂપ જ્ઞાનમાં આવવું જોઈએ, નહીતર તુંબડીમાં કાંકરા ખખડ્યા ને અવાજ આવ્યો એના જેવું થશે. સ્વરૂપ જ્ઞાનમાં આવવું. આચાર્ય ઉપાધ્યાય પણ જે રીતે અનુભવ કર્યો છે એ વાત કરે છે. કોઈ તુંબડી હોતી હૈ કંકર રાખતે હિલાતે તો અવાજ આતા હૈ ને, ઇસકા મીનિંગ ક્યા હોતા હૈ, કોઈ અર્થ નિકલતા હૈ? તો એસે કોઈ બોલતે કે નમો અરિહંતાણમ, ઓર અર્થ તો ઉસકા ભાવ તો સમજે નહીં, અરિહંત કે સ્વરૂપ સમજે નહીં, તો બોલા ક્યા કે તુંબડી મેં કાંકરા અવાજ આઈ, તુંબડી મેં કાંકરા કા અવાજ આઈ, એસે અવાજ આઈ નમો અરિહંતાણમ, વહી બાત હો ગઈ. નિરર્થક